नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द आर्ट ऑफ गेम डिजाइन, अ बुक ऑफ लेंसेज, 3rd एडिशन। जैसी शेव की गेम डिजाइन पर आधारित विस्तृत गैर कथात्मक पुस्तक है। इसका उद्देश्य किसी खेल को केवल नियमों, ग्राफिक्स या कहानी के रूप में देखने के बजाय खिलाड़ी के अनुभव को केंद्र में रखकर समझना है। शेल का मुख्य उपकरण लेंसेस कहलाने वाले प्रश्नों के अनेक दृष्टिकोण है। इनके माध्यम से डिजाइनर अपने खेल की स्पष्टता, चुनौती, आनंद, भावनात्मक असर, सौंदर्य, तकनीक और सामाजिक अनुभव की जांच कर सकता है। पुस्तक बोर्ड गेम, कार्ड गेम, खेलकूद और डिजिटल गेम के बीच साझा डिजाइन सिद्धांतों को भी रेखांकित करती है। 3rd संस्करण में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, फ्री टू प्ले और आधुनिक डिजिटल खेलों के संदर्भ जोड़े गए हैं। यह कोई कठोर क्रमबद्ध नुस्खा नहीं देती, इसके बजाय यह डिजाइन निर्णयों पर बेहतर प्रश्न पूछने की आदत विकसित करती है। यही कारण है कि यह आरंभिक विद्यार्थियों से लेकर अनुभवी विकास दलों तक के लिए उपयोगी संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लेंसेस पद्धति, एक ही खेल को अनेक निर्णायक दृष्टियों से परखना पुस्तक की सबसे विशिष्ट अवधारणा लेंसेस पद्धति है। हर लेंस प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो डिजाइनर को खेल के किसी खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने देता है। उदाहरण के लिए, एक दृष्टि खिलाड़ी के आनंद या जिज्ञासा को जान सकती है, जबकि दूसरी लक्ष्य की स्पष्टता, नियमों की समझ, निष्पक्षता या भावनात्मक प्रभाव को देखती है। इसका महत्व यह है कि खेल की समस्या अक्सर सतह पर दिखने वाली समस्या से अलग होती है। खिलाड़ी यदि किसी स्तर को छोड़ देता है तो कारण केवल कठिनाई नहीं हो सकता, लक्ष्य अस्पष्ट हो सकता है, पुरस्कार अर्थहीन लग सकता है, नियंत्रण असहज हो सकते हैं या विफलता से सीखने का अवसर नहीं मिल रहा हो सकता है। लेंसेस डिजाइनर को एक ही उत्तर पर जल्दी पहुंचने से रोकते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत राय से हटाकर जांच योग्य प्रश्नों में बदलते हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि सभी लेंस हर परियोजना पर समान रूप से लागू नहीं होते। उपयुक्त दृष्टि का चयन खेल के उद्देश्य, माध्यम और लक्ष्य खिलाड़ियों के अनुसार होना चाहिए। इस तरह पद्धति चेकलिस्ट से अधिक पुनरावृत्त चिंतन का ढांचा बनती है। दूसरा, खिलाड़ी अनुभव को नियमों और फीचरों से पहले रखना। शेल के विचार में खेल का वास्तविक उत्पाद केवल सॉफ्टवेयर, बोर्ड, पात्र या नियमों का संग्रह नहीं है। वास्तविक उत्पाद वह अनुभव है जो खिलाड़ी खेलते समय महसूस करता है। इसलिए डिजाइन का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि खिलाड़ी क्या समझता है, क्या चुनता है, किस बात की परवाह करता है और खेल समाप्त होने के बाद क्या याद रखता है। यह दृष्टि फीचर जोड़ने की सामान्य प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाती है। अधिक विकल्प, अधिक सामग्री या बेहतर दृश्य अपने आप बेहतर अनुभव नहीं बनाते। यदि वे खिलाड़ी के लक्ष्य, लय या ध्यान को कमजोर करते हैं तो वे खेल को बोझिल कर सकते हैं। पुस्तक में चुनौती और क्षमता के संतुलन का महत्व भी उभरता है। बहुत आसान खेल रुचि घटा सकता है, पर अत्यधिक दंडात्मक खेल खिलाड़ी को सीखने से पहले ही दूर कर सकता है। उपयोगी कठिनाई वह है जिसमें खिलाड़ी को अपनी गलती और सुधार की संभावना दोनों समझ आए। इसी तरह चयन तभी अर्थपूर्ण बनता है जब विकल्पों के परिणाम अलग हों और खिलाड़ी उन्हें किसी हद तक पढ़ सके। यह सिद्धांत परीक्षण की जरूरत को स्पष्ट करता है। डिजाइनर की मंशा पर्याप्त नहीं, वास्तविक खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया निर्णायक प्रमाण है। 3रा, मैकेनिक्स, लक्ष्य और फीडबैक से उभरती सार्थक चुनौती। पुस्तक खेल के मैकेनिक्स को अलगाव में नहीं बल्कि खिलाड़ी के लक्ष्य और फीडबैक के साथ जोड़कर देखती है। मैकेनिक्स वे क्रियाएं और नियम हैं जिनके माध्यम से खिलाड़ी खेल की दुनिया में हस्तक्षेप करता है। लेकिन कोई नियम तभी प्रभावी बनता है जब खिलाड़ी को यह पता हो कि वह क्या हासिल करना चाहता है, उसके पास कौन से विकल्प है और उसके निर्णय का परिणाम क्या हुआ। स्पष्ट लक्ष्य दिशा देते हैं, बाधाएं तनाव बनाती है और फीडबैक खिलाड़ी को अपनी रणनीति बदलने का आधार देता है। इस संबंध में संतुलन का अर्थ केवल संख्याओं को बराबर करना नहीं है। संतुलन का प्रश्न यह भी है कि क्या विभिन्न रणनीतियां व्यवहार्य हैं, क्या जीत योग्यता से जुड़ी महसूस होती है और क्या जोखिम तथा पुरस्कार का संबंध समझ में आता है। कभी कभी जानबूझकर असमानता भी रोचक हो सकती है यदि भूमिकाएं अलग हो और खेल उसे न्यायसंगत अनुभव में बदल सके। शेलबोर्ड और कार्ड खेलों की सीख को वीडियो गेम पर लागू करते हैं क्योंकि दोनों में निर्णय, सीमाएं, संकेत और परिणाम की संरचना मौजूद होती है। इससे डिजाइनर तकनीकी प्रस्तुति के पीछे छिपे मूल खेल ढांचे को पहचान पाता है। 4था, कहानी, सौंदर्य और तकनीक को एकीकृत डिजाइन निर्णय मानना। द आर्ट ऑफ गेम डिजाइन कहानी, दृश्य शैली, ध्वनि और तकनीक को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भर नहीं मानती। पुस्तक का तर्क है कि ये सभी तत्व खिलाड़ी के अनुभव और खेल के केंद्रीय उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं। कहानी खिलाड़ी को संदर्भ, प्रेरणा और भावनात्मक अर्थ दे सकती है, लेकिन वह खिलाड़ी की क्रियाओं से कट जाए तो केवल सजावट बनकर रह जाती है। इसी प्रकार सौंदर्य केवल सुंदर चित्रों का प्रश्न नहीं है। रंग, आकार, एनिमेशन, ध्वनि और इंटरफेस खिलाड़ी का ध्यान निर्देशित करते हैं, वातावरण बनाते हैं और फीडबैक को समझने योग्य करते हैं। तकनीक के बारे में भी पुस्तक साधन और उद्देश्य का भेद स्पष्ट करती है। नई तकनीक इसलिए उपयोगी नहीं हो जाती कि वह नई है। उसका उपयोग तभी सार्थक है जब वह अनुभव के किसी आवश्यक पक्ष को बेहतर बनाए। तीसरे संस्करण में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के उदाहरण इसी परिवर्तन को समझने में मदद करते हैं। इन माध्यमों में उपस्थिति, स्थान, शरीर की गति और आराम महत्वपूर्ण डिजाइन प्रश्न बन जाते हैं। फ्री टू प्ले तथा मिश्रित खेलों के संदर्भ भी दिखाते हैं कि व्यावसायिक मॉडल और मंच की सीमाएं खिलाड़ी के भरोसे तथा अनुभव को प्रभावित कर सकती है। अंत में प्ले टेस्टिंग और पुनरावृत्ति विचार को खेलने योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया। पुस्तक का व्यावहारिक पक्ष इस बात पर जोर देता है कि उत्कृष्ट खेल पहले प्रयास में पूर्ण नहीं बनते, वे विचार, प्रारूप, परीक्षण, अवलोकन और संशोधन के कई चक्रों से गुजरते हैं। डिजाइनर को अपने खेल का आरंभिक अधूरा रूप भी जल्दी खिलाड़ियों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक खेल व्यवहार ऐसी समस्याएं उजागर करता है जिन्हें अकेले कल्पना से पकड़ना कठिन है। खिलाड़ी नियम पढ़कर समझ रहा है या नहीं, अनपेक्षित रणनीति खोज रहा है या नहीं, किस क्षण उत्साहित या भ्रमित हो रहा है और कहां खेलना बंद कर देता है, ये सभी उपयोगी संकेत है। पुस्तक परीक्षण के दौरान सही प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी स्थापित करती है। केवल यह पूछना कि खेल अच्छा लगा या नहीं सीमित जानकारी देता है। खिलाड़ी की क्रियाओं का अवलोकन, उसकी अपेक्षाओं का पता लगाना और विशिष्ट क्षणों पर प्रतिक्रिया समझना अधिक उपयोगी है। फिर भी हर प्रतिक्रिया को सीधे लागू करना उचित नहीं। अलग खिलाड़ियों की पसंद भिन्न हो सकती है, इसलिए डिजाइनर को प्रतिक्रियाओं के पीछे का कारण पहचानना होता है। लेंसेस यहां निदान का काम करते हैं। वे परीक्षण से प्राप्त संकेतों को लक्ष्य, चुनौती, उपयोगिता, भावना या स्पष्टता जैसी व्यापक समस्याओं से जोड़ने में सहायता देते हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक गेम डिजाइन सीखने वाले विद्यार्थियों, स्वतंत्र डेवलपर्स, बोर्ड गेम रचनाकारों, शिक्षण अनुभव बनाने वालों और विकास दलों के कलाकारों, प्रोग्रामरों तथा निर्माताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे केवल उन लोगों तक सीमित नहीं समझना चाहिए जो डिजिटल वीडियो गेम बनाना चाहते हैं। निर्णय, नियम, भागीदारी और फीडबैक वाले किसी भी इंटरैक्टिव अनुभव के निर्माण में इसके प्रश्न सहायक हो सकते हैं। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक अस्पष्ट प्रतिक्रिया, जैसे खेल मजेदार नहीं है, को अधिक ठोस जांच में बदलना सीखता है। वह पूछ सकता है कि समस्या लक्ष्य की है, नियंत्रण की, गति की, जोखिम की, कथा के संदर्भ की या पुरस्कार की। बौद्धिक रूप से पुस्तक यह समझ विकसित करती है कि गेम डिजाइन अनेक परस्पर निर्भर तत्वों का संतुलन है, न कि केवल रचनात्मक विचार या तकनीकी निष्पादन। समान विषय की कई पुस्तकों के विपरीत, इसकी पहचान किसी एक शैली, इंजन या उत्पादन पद्धति से नहीं, बल्कि लेंसेज के व्यापक प्रश्न ढांचे से बनती है। यही ढांचा इसे समय के साथ उपयोगी बनाए रखता है, क्योंकि मंच और तकनीक बदलने पर भी खिलाड़ी अनुभव, चुनाव, स्पष्टता और अर्थ के मूल प्रश्न बने रहते हैं। तीसरा संस्करण नए माध्यमों और व्यावसायिक रूपों के संदर्भ जोड़कर इस आधारभूत दृष्टि को समकालीन बनाता है। इसे रैखिक पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ा जा सकता है, पर परियोजना के दौरान संदर्भ उपकरण की तरह इस्तेमाल करना भी उतना ही मूल्यवान है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जैसी शैल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।